अरुणिमा इस वक्त अपने कमरे में थी और गहरी नींद में थी, लेकिन तभी उसे हल्की हल्की सी बेचैनी होने लगी। शायद वो कोई सपना देख रही थी। नहीं, सपना नहीं, ये वही समय था जब आस्तिक पर हमला हुआ था। अरुणिमा को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किचन से बाहर आती है और आस्तिक के लिए खाना लेकर ऊपर जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र सामने जाती है, और सामने का नज़ारा देखकर वो अपनी जगह पर ही जम जाती है। आस्तिक पर हमला हो रहा था और हमलावर के हाथ में बंदूक थी। अरुणिमा इतनी ज़्यादा डर गई कि आस्तिक का नाम चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर हमलावर की नज़र अरुणिमा पर जाती है और वो उस पर फायर कर देता है। बंदूक की आवाज़ सुनकर अरुणिमा को लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ आस्तिक की फ़िक्र थी। वो गोली अरुणिमा को नहीं लगी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने आस्तिक को हमेशा के लिए खो दिया है। उसका दिल डर और दुख से भर गया था। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, पर आस्तिक के बिना जीने की कल्पना भी नहीं थी। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस वक्त उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। उसे लगा गोली आस्तिक को लगी, लेकिन जब गोली उसके पास से गुजरी तो अरुणिमा पत्थर सी हो गई। उसकी धड़कनें थम सी गई थीं। ये पहली बार था जब उसने गोली को इतने करीब से महसूस किया था। अरुणिमा किस बात का शुक्रिया करे? इस बात का कि आस्तिक ने हमलावर का हाथ खींच लिया, या इस बात का कि जहां वो खड़ी थी वहां से गोली का निशाना चूक गया? गोली उसके बाजू के बिल्कुल बगल से गुजरी थी। डरी हुई निगाहों से अरुणिमा ने देखा कि आस्तिक उस हमलावर पर हावी हो रहा है, और उसने इतनी जोर से उसे मारा कि उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। लेकिन तभी उस आदमी ने कहीं से एक खंजर निकाला और आस्तिक पर हमला कर दिया। ये देखकर अरुणिमा अंदर तक हिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आस्तिक को बचाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसके पैर के नीचे वो बंदूक आ गई जो उस लड़के के हाथ में थी। अरुणिमा ने वो बंदूक उठा ली। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वो लड़का जो आस्तिक की जान लेना चाहता था। उसने अभी अभी आस्तिक को खंजर मारा था और अब फिर से हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अरुणिमा ने फायर कर दिया। ये फायर उसने कैसे किया, कौन सा ट्रिगर दबाया, कैसे बंदूक चलाई, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता था कि उसे बंदूक चलानी है और उस लड़के को मार देना है, वरना वो आस्तिक को मार देगा। अरुणिमा एक झटके से जाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो लगभग बिस्तर से गिरने को थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। बड़ी बड़ी आंखें खोले वो अपने कमरे को देख रही थी। उसके सीने पर एक दबाव महसूस हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे उसने किसी का खून कर दिया है। मरे हुए आदमी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो जोर जोर से सांस ले रही थी और चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपने कमरे में अचानक से अकेलापन और घुटन महसूस होने लगी। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया और बिस्तर से उतरकर दौड़ पड़ी। तेज कदमों से दरवाजे की तरफ गई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सीढ़ियों के पास जाकर उसके कदम थम गए। उसकी नज़र नीचे हॉल पर गई, वो जगह जहां उसने उस लड़के को मारा था। सीढ़ियां उतरते हुए वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र बस उसी जगह पर थी। वहां अब ना तो लड़का था, ना ही कोई खून, लेकिन अरुणिमा को बार बार महसूस हो रहा था कि वो लड़का अभी भी वहीं मरा पड़ा है। वो एकदम से वहां चली गई और जोर जोर से चीखने लगी, मैंने मार दिया, मैंने उसे मार दिया। अरुणिमा पैनिक करने लगी थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, वो चिल्ला रही थी। तभी अचानक आस्तिक वहां पहुंच गया। वो अभी अभी घर आया था। गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अंदर से आवाज़ सुनाई दी, मैंने मार दिया। आवाज़ सुनकर आस्तिक समझ गया कि ये अरुणिमा है। वो तेजी से अंदर भागा और देखा कि अरुणिमा उस जगह को देख देख कर चिल्ला रही थी जहां उस लड़के की लाश थी। आस्तिक समझ गया कि अरुणिमा को पैनिक अटैक आ गया है। वो तुरंत उसके पास गया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया जब तक कि अरुणिमा शांत नहीं हो गई। अरुणिमा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन आस्तिक उसे सांत्वना दे रहा था, उसे समझा रहा था, चुप करा रहा था। शांत हो जाओ अरुणिमा, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। गहरी सांस लो और महसूस करो, देखो सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आस्तिक ने अरुणिमा को शांत करवाया। उसकी माँ का रोना तो रुक गया, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। उसने रोते हुए जोर जोर से हिचकियाँ लेना शुरू कर दिया और आस्तिक को देखकर बोली, वो आदमी कहाँ गया जिसे मैंने मारा है? आस्तिक ने अरुणिमा का चेहरा देखा जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसने एक हाथ से उसके आंसू पोंछे और उसके गाल सहलाते हुए कहा, वो वहीं गया है जहां उसे होना चाहिए था, और तुमने उसे मारकर कोई गलती नहीं की है। अगर तुम उसे नहीं मारती तो वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को मार देता। अरुणिमा डर हैरानी की नज़रों से उसे देखने लगी तो आस्तिक ने हामे के हिलाया। फिर वो आगे बढ़ा और अरुणिमा के माथे को चूम लिया। उसने उसका सिर अपने सीने पर रखकर धीरे धीरे उसे सहलाना शुरू किया। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अरुणिमा को आस्तिक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान अभी अभी किसी की जान लेकर आया है। उसे देखकर नहीं लगता था कि ये आदमी कभी दूसरा बाप बन सकता है। आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मजाकिया मुस्कान थी। उसने अरुणिमा के कंधे पर हल्के से थपकी दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जान लेकर तुमने बाकियों का भी भला किया है। अरुणिमा हैरान रह गई। उसने खुद को आस्तिक से अलग करते हुए कहा, मैंने किसी की जान ली है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छा काम है, खून करना अच्छा काम है। आस्तिक का चेहरा बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। वो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता रहा और बोला, हाँ ये बहुत अच्छा काम है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम्हें ये काम रोज करना चाहिए, तुम मर्डर करने में एक्सपर्ट हो जाओगी। अरुणिमा का मुंह हैरानी से छोटा हो गया। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, ये मेरी तारीफ है या मेरी इंसल्ट? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, 100% तारीफ है, और जो तुमने किया है उसका इनाम तो बनता है ना। इनाम शब्द सुनते ही अरुणिमा की आंखों में डर आ गया। आस्तिक का इनाम और उसकी सजा दोनों ही अरुणिमा पहले झेल चुकी थी और दोनों ही उसके लिए बेहद दर्दनाक थे। आस्तिक जब भी उसके साथ हार्श इंटिमेसी करता, अरुणिमा उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। उसने जल्दी से कहा, आस्तिक मैंने कहा था ना मेरे पीरियड्स, लेकिन आस्तिक मुस्कुराता हुआ अरुणिमा का माथा सहलाता है और कहता है, हाँ जानता हूँ तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हारा मूड स्विंग इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है। असल में पिछले दिनों आस्तिक ने अरुणिमा के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन अरुणिमा ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं, और तब से अब तक वो इसी झूठ को आगे बढ़ा रही थी। वो जानती थी कि कभी ना कभी आस्तिक उससे पूछेगा जरूर, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। आस्तिक अरुणिमा को देखते हुए कहता है, तैयार हो जाओ हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो आस्तिक को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जरा सा भी मुस्कान का भाव नहीं था, बल्कि वो आश्चर्य से उसे घूरे जा रही थी। क्या अभी अभी उसने सही सुना, आस्तिक कह रहा है कि वो उसे डिनर पर बाहर ले जा रहा है, लेकिन ऐसा कैसे? डिनर छोड़ो, जब तक आस्तिक को कोई पर्सनल फायदा ना हो वो अरुणिमा को घर से बाहर नहीं निकलने देता, तो फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे?
आस्तिक अपनी इंटेंस नजरों से अरुणिमा के करीब आता है, उसके कान के पास झुकता है और कहता है, मिस रायचंद मुझे बहुत भूख लग रही है, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें खाने का इरादा बना लूं, जल्दी तैयार हो जाओ। अरुणिमा जानती थी कि अगर आस्तिक का इरादा बदल गया तो उसके पीरियड्स भी उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वो तेजी से कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूं। उसे ऐसे भागते हुए देख आस्तिक की हंसी छूट गई, लेकिन जैसे ही अरुणिमा कमरे में चली गई, आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपना फोन निकाला और नीरज को कॉल किया। नीरज, मैं अरुणिमा को लेकर डिनर पर जा रहा हूं, तुम आगे का काम खत्म करो।